द्वैपायनो विरहकातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चल। श्री चैतन्य चरितामृत आदि चतुर्थ। महाप्रभु जी के अवतार का कारण बतलाते हुए यह वर्णन किया है कि कृष्ण के तीन प्रकार के उम्र होते हैं, कौमार, पौगंड और कैशोर। बचपन और लड़कपन और किशोर, जिसमें माता जी के पास में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कौमार काल का आस्वादन किया। सर्वशक्तिमान होते हुए भी छोटे से बच्चे के रूप में करवट नहीं बदल पाते और शिशुचित समस्त लीलाओं को किया, तत्वात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब कुछ बड़े हो गए तो 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की उम्र तक सखाओं को लेकर के पौगंड उम्र सफल किया। बच्चों के साथ में इधर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बंदर जैसा नाच रहे हैं, कोयल जैसा नाच कुहू कुहू कर रहे हैं, मेढक जैसा कुत्ते फानते हैं, इस तरह से लीलाएं करते हैं, गोचारण करते हैं और राधिका इत्यादि को लेकर के रासादि विलास के द्वारा वांछा भरी आस्वादिल रस निर्जास, प्रेम रस का निर्जास सार उन्होंने गोपियों के साथ में आस्वादन किया। कैशोर वयसे काम जगत सकल रासादि लीलाए तीन करिल सफल। क्या कैशोर उम्र में जगत सकल माने क्या क्या होगा? कैशोर वयसे काम जगत सकल रासादि लीलाए तीन करिल सफल क्या माने? किशोर उम्र में काम को रासादि के द्वारा सफल किया, जगत सफल बने के मने काम समूह को, जगत मने ही समूह
सबके हृदय में भाव
है,
सबके हृदय में काम के भाव उत्पन्न करा दे।
काम जगत सकल रास आदि लीलाओं के द्वारा तीन सफल कर किया। तीन मैंने यहाँ क्या, तीन मैंने क्या,
इच्छा की तीन
क्या
बनाया
नहीं? देखो इसको लगाओ, बचपन में कौमार काल में वात्सल्य के आस द्वारा सखाओं को पौगंड के उम्र पौगंड उम्र को सखाओं के साथ और किशोर वयस में गोपियों के साथ में काम को सफल किया, इस प्रकार से तीनों को सफल किया। आया समझ में? कुमार, पौगंड और किशोर। किशोर में काम के द्वारा गोपियों के द्वारा राशि इत्यादि में विविध प्रकार से उसको सफल किया। इसी के लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है विष्णु पुराण से उद्धृत कर। कृष्ण स्वयं भगवान है, वो आत्मारामों के भी आत्माराम है। क्या हुआ देखो ठीक कर दो, आत्मारामों के भी आत्माराम है। उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको वो कभी पूर्ण नहीं कर सकते। काम है उनको कोई कामना नहीं, तो भी माता पिता से, सखाओं से और गोपियों से अपेक्षा रहती है। उनके अंदर में काम नहीं रहने पर भी ये काम की उद्दीपना करा देती हैं, कामना की उद्दीपना करा देती हैं। कौन? सखा, माता पिता और गोपियां सबसे अधिक ये करती हैं। और सबका तो उदाहरण दिया है, किशोर उम्र के लिए उदाहरण नहीं दिया, उसके लिए श्लोक का ये दे रहे हैं विष्णु पुराण से। सो अपि कई सो रख बयो मानयन मधुसूदन रेमे स्त्री रत्न कुटस्थो छपाशु खपिता हित। सो अपि कृष्ण सर्वशक्तिमान समस्त रसों के आधार रसस्वरूप होकर के भी रसिक बनते हैं, और रसिक बन करके किशोर उम्र को मानयन मधुसूदन, मधुमान्य रस उसका आस्वादन करने वाले रसशेखर जो कृष्ण हैं। कैसे रसशेखर हैं? दो रूपों में, आस्वाद्य एवं आस्वादक दोनों रूपों में हैं। रसस्वरूप भी हैं और रस को आस्वादन करने वाले भी। ऐसे कृष्ण अपने को सफल माना अपने जीवन को, किशोर उम्र को, रेमे स्त्री रत्न स्त्रियों में जो सबसे चूड़ामणि के रूप में हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, जो लक्ष्मी जी से भी, द्वारका की महिषियों से भी जो श्रेष्ठ हैं, जो गुणों में, रूप में सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, उनके साथ में रास इत्यादि के द्वारा छपिताहितः कोई हानि से रहित, अमंगल से शून्य, खपित अहितः अर्थात छपाशु रात्रि में उनके साथ में कितने दिन की रात्रि, ब्रह्मा जी के एक रात्रि में उनके साथ में विविध प्रकार के क्रीड़ाओं को किया। अथवा इसका स्त्री रत्न कुटस्थ स्त्री रत्न कुटस्थ स्त्री रत्नों के बीच में स्थ रहकर, बीच में कितनी स्त्रियां हैं उनके बीच में अकेले कृष्ण, और ऐसा मालूम पड़ा जैसे सब गोपियों के साथ में एक कृष्ण हैं, एक एक कृष्ण हैं, बीच में मध्यस्थ में कूटस्थ, जैसे कूट गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ में परिक्रमा दी जाती है, ऐसे कृष्ण मध्यस्थ होकर के गोपियों के साथ में आवृत होकर के वहां पर ब्रह्मा की एक रात्रि में रास इत्यादि किए, और इस प्रकार अपने उस उम्र को उन्होंने महिमा मंडित किया। अथवा स्त्री रत्न कूटस्थ गोपियों को ही कूट मान लो, पर्वत मान लो, अथवा गोवर्धन को कूट, स्त्री रत्न कूटस्थ गोवर्धन जो पर्वत हैं वो कूट माने पर्वत, उनके ऊपर में या उनके आसपास में इन्होंने रास इत्यादि कर करके और अपने किशोर अवस्था को सफल बनाया। बाचो सूचित सर्वरी रतिकला प्रागल्भतया राधिकम बीड़ा कुंचित लोचनम ब्रिचन अग्रे सखी नामसौ तद्वक्षो रूह चित्र खेली मकरी प्राप्त पांडित्य पारम गता केशोरम सफली करोत कल्याण कुंजे विहार। भक्ति रसामी सिंधु में इसके लिए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना, उसमें से इसको उन्होंने लिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कृष्ण कैसे हैं बाचा सूजित सर्वरी रतिकला प्रागल्भताया राधिका। बाचा, बाचा माने वाणी। कृष्ण ऐसे रसिक हैं जिनकी बातों बातें बड़ी रसीली हैं। एक एक बातों का हजार हजार अर्थ होता है। किस रूप में किस चीज का अर्थ ग्रहण करते हैं वही जैन। सूचित सर्वरी, कभी सर्वरी मैंने रात, रात की लीला में राधिका जी के मिलने के समय में प्रगल्भता, प्रगल्भता जो श्रीमती राधिका जी ने की उसको सब सखियों के सामने उन्होंने कहा, और जिससे राधा जी लज्जित हो गईं और आंख को नीचा कर दिया, कुछ लज्जित हो गई सखियों के सामने। कृष्ण ने ऐसी कोई बात कही, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बतलाई जो राधिका जी सुन करके अपने आप लज्जित हो गई, और कृष्ण और सब गोपियां हंसने लग गईं। उसमें उन्होंने पांडित्य प्रकाश किया उस लीला में। इस तरह से उन्होंने कई सोरम सफली करो कल्याण कुंजे विहार हो हरि। कृष्ण ने कुंज में गोपियों के साथ में विहार करके अपने किशोर जीवन को सफल किया। ये किंतु ये जगत की कोई चीज नहीं है लीला। ये लीला केवल उतरती है और अपने परिकरों के साथ में होती है, जिसका इस जगत के लोग नहीं समझ सकते। साधारण रूप में इस जगत का नियम है स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए, और पुरुष को भी राम के समान होना चाहिए, स्त्री को सीता के समान होना चाहिए, यही नियम है। किंतु यह नियम इस पृथ्वी लोक में ही है। स्वर्ग में या स्वर्ग के लोकों में ये नियम नहीं चलता ने? क्यों नहीं चलता? उनका शरीर मन कुछ अलग है, उनका शरीर स्थूल हम लोगों जैसा नहीं है, इसलिए वहां नहीं होता। जैसे अर्जुन गए इंद्र के पास में, इंद्रलोक में सीखने के लिए, कुछ वनवास का समय एक वर्ष कटाने के, और वहां से इंद्र के द्वारा बहुत सी कुछ अस्त्र शस्त्र ग्रहण करेंगे, और तब फिर यहां पर युद्ध होने पर उसको काम में लगाएंगे। तो वहां गए, ये इनको इंद्र का पुत्र माना जाता है, इंद्र के अंश से आए हैं। कौन? अर्जुन में एक और अंश है जो कृष्ण के परिकर हैं। उस परिकर में इंद्र का यह अंश प्रवेश करके ऐसा मालूम होता है कि यही काम कर रहा है। तो अर्जुन एक ही है, किंतु उनमें दो अर्जुन काम कर रहे हैं। एक कृष्ण के सखा अर्जुन उनके साथ में मिल गए हैं, इंद्र भी आए हैं आंशिक रूप में। तो ये अर्जुन वहां पर गए, लोगों ने देखा जो इंद्र के पुत्र आए हैं, बड़ा आदर किया उन्होंने। इंद्र ने अपने पुत्र के रूप में उनको अभिषेक किया और पुत्र के रूप में उनका आदर पालन लालन पालन किया। ये सभा में रहे, कुछ देर के बाद में वहां से उठ करके वो किसी काम से चले गए या कुछ समझ कर गए। उसी समय में अर्जुन ने उर्वशी के प्रति बड़ा ध्यान से देखा। जब उनके तरफ में एक तक देखते रहे कुछ देर, तो उर्वशी ने समझा जैसी स्त्रियों की आदत होती है कुछ, ये हमारे तरफ में देख रहा है तो हमारे सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो रहा है, और ये है तो इंद्र का ही लड़का, इंद्र ही के समान है। इसलिए वो जाकर के एकांत में मिली और बोली, तुम मुझे पत्नी के रूप में देखना चाहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, जब तुम मेरी मैया है तो हमारे तरफ में क्यों देखा? तो इसलिए देखा जी हमारे वंश की तुम मूल माता हो, तुम्ही से हमारा वंश ये आया। कैसे आया? उर्वशी से। उनके पूर्व पुरुष जो हैं वो उन्हीं से ही आए हैं। यह हो सकता है चंद्रवंश से, चंद्रवंश में वो है शायद, चंद्रवंश ही संबंधित है। तो उसी में कोई राजा थे पुरूरवा या उन्हीं से उर्वशी का संपर्क हुआ था, उसी के वंश में ये आए हैं। इसलिए मैंने देखा जी आज बहुत दिनों के बाद में अपनी कुल माता को मैंने देखा, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में तुम्हारी चरणों की तरफ में मैं देख रहा था। ये आज मैं पवित्र हो गया जी, मेरी मैया का दर्शन किया। तो उसने कहा कि नहीं, ये स्वर्गलोक में ये सब चीजें नहीं है, यहाँ पर मैया दैया का कोई भी संपर्क नहीं, यहाँ पर जड़ शरीर स्थूल शरीर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर समस्त देवताओं के साथ में रह करके भी पतित्व नष्ट नहीं होता। मैं इंद्र की प्यारी हूँ किंतु सबसे मिलती हूँ, इसलिए हमारा सतित्व नष्ट इसीलिए नहीं होता। क्यों? ये शरीर जड़ ही नहीं है। तब इससे ऊपर और चले जाओ ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में, उससे भी ऊपर ब्रजलोक में जाओ, वहां पर ये स्थूल शरीर रहता है? नहीं रहता। वहां पर एकमात्र पुरुष हैं कृष्ण, और बाकी जितने हैं सब स्त्री। इस जगत में भी मनुष्य स्त्री रूप में ही है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तटस्था शक्ति से हम लोग उत्पन्न हैं। सब शक्ति तटस्था शक्ति के परिणति हम लोग हैं। पुरुष रूप में रह करके भी वो स्त्री है, क्योंकि वो भोग चाहता है, जिसके अंदर में भोग है वही स्त्री है। इसलिए कृष्ण लीला बहुत ऊंचा है, उसमें जड़ शरीर नहीं, स्थूल मन नहीं, उसमें आत्मा का सभी कुछ है, प्रेम से सब बना हुआ कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए वहां पर दूषणीय नहीं है, किंतु इस जगत में थोड़ा सा भी इधर हो जाए, ऐसी चिंता भी करें तो व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए ये सब साधन की वस्तु है, साधारण चीज नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। यदि परीक्षित महाराज अपनी मैया को कह रहे हैं कि तुम कृष्ण को अपना प्रियतम मानो, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कुंती जी मैया है कृष्ण की बुआ माने माँ, बुआ और माँ में अंतर नहीं होता। और कुंती जी कहती हैं जो गोपियां जैसा भाव हमारा आप तुम्हारे प्रति हो, ये केवल प्रभु के लिए कृष्ण के लिए संभव, और जगत में ये संभव पर नहीं। इसलिए इस जगत में यदि पति कृष्ण का भजन करता है, पत्नी करती है, उसकी बेटी भी करती है, उसका बेटा भी करता है, उसकी नाती भी करता है, नातिनी भी करता है, कृष्ण को अपना पति समझ सकता है। उसकी मैया भी समझेगी, उसकी बेटी भी, उसकी नातिनी भी, उसकी भी नातिनी, वो भी सभी कृष्ण को ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा से वैसा संबंध है, स्थूल शरीर से ऐसा नहीं है। ये उपासना की बातें हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रेम का आविष्कार किया जगत के जीवों के लिए। यदि क्रोध से भगवान को पाया जा सकता है, जैसे शिशुपाल इत्यादि और कंस भय के द्वारा पाया, तो क्यों नहीं कृष्ण से यदि जैसा भी काम भी हो एकांतिक कृष्ण में, तो उसके द्वारा कृष्ण को सहज ही पाया जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार करके दिया। इस चीज को अभी भी हम समझते कि लाखों कोटि में से कोई बिरला ही इस तत्व को समझे कि क्यों ऐसा किया, व्यभिचार में उपासना क्यों, उसमें आसक्त होने के लिए, उसमें तन्मय होने के लिए, उसमें तदात्म होने के लिए। ऐसा सांप आ जाए, एक बंदर आ जाए, बंदर उधर से आया छलांग मार करके कूद गया, हम कथा कर रहे हैं हमारे तरफ में ध्यान आएगा ना उस बंदर की तरफ में, बंदर की तरफ क्यों, कहीं किसी को पकड़ नोच न ले। सांप एक आ जाएगा सब उसमें उस तन्मय हो जाएंगे, ये शत्रु भाव। भक्ति से उतना नहीं होगा, जितना काम के द्वारा हुआ, काम उसे भी और प्रबल है। आदमी पागल हो जाता है काम से, वो पागलपन काम कृष्ण में क्यों नहीं अर्पित किया जाए, उसके द्वारा ही कृष्ण को पा ले। आ रहा है कुछ समझ में? इसलिए महाप्रभु ने देखा इनकी सर्वोत्तम, ऐसा कोई नहीं है जगत में जिसमें काम नहीं हो, वो काम कृष्ण के प्रति लागू हो। इसलिए जैसे एक लड़का या एक लड़की एक सुंदर लड़के को देख करके बस उसके तरफ में मन लग जाता है, इस मन को कृष्ण में लगाओ, संसार में मत लगाओ। इसलिए हरिरेश न चेत वा अवतरी अवतरिष्यत मथुरायां मथुराक्षिरादिका च अभविष्यत यं पृथा विसृष्टि मकरान्तकस्तु विशेष तत्मात्र। यदि कृष्ण और राधिका इस जगत में नहीं अवतार लेते, नहीं अवतर लेते इस मथुरा भूमि में, मथुरा माने ब्रज में जो मधु, मधु माने रसपूर्ण मथुरापुरी है, उसमें मधुराक्षी श्रीमती राधिका, मधुराक्ष कृष्ण, इसके बहुत सब अर्थों में यदि जगत में नहीं अवतार लेते तो यह प्रेम अधूरा रह जाता, यह विश्व सृष्टि भी अधूरी रह जाती। सृष्टि विसृष्टि मकरांक माने क्या है? माने कामांक, ये सब बेकार का हो जाता है। ये सृष्टि भगवान ने इस काम को दिया है, ऐसा कोई पेड़ पौधा जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर में नहीं है, ऐसा कुछ है प्राणी जो कि स्वजातीय स्त्री के प्रति आसक्त न हो जाए और स्त्री पति पुरुष के प्रति आसक्त न हो, चाहे कुत्ता हो, गधा हो, भेड़ हो, बकरा हो, सुअर हो, लता हो, गुल्ब हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, ब्रह्मा तक पहुंच जाओ, शंकर जी तक पहुंचो, है कोई बात ही जिसमें ये नहीं है? जितना भी कोई शंकराचार्य हो जाए, जो कुछ भी काम ना छोड़ दे, तो भी किसी न किसी रूप में ये रहेगा, ये प्रेम है, वही जगत में काम के रूप में है, वहां पर है जरूर। जो हमको दिया है भगवान ने इतनी अच्छी चीज, इसका यदि हम कुव्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे तो मरेंगे, फंस जाएंगे संसार, असद व्यवहार किया तो सबसे अच्छी चीज पा लेंगे। चाकू है, उसके द्वारा हम फल को काट करके खा करके जीवित रह सकते हैं, और चाकू से कोई अपना गला काट ले, बिजली बहुत आविष्कार करके रख दी, घर घर में बिजली जा रही है, रोशनी देती है, पंखा देती है, कूलर से सब कुछ होता है, और कोई बिजली का तार के ऊपर का कवरिंग हटा करके पकड़ ले तो क्या होगा? वैसे आत्महत्या लोग करते हैं, तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। इस तरह से भगवान ने एक अपूर्व चीज हमको दी है, इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, ये प्रेम दिया है हृदय में, जब भी काम सा दिखता है इसको भगवान के प्रति शुद्ध करके लगा दिया जाए, इसी का नाम प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। इसलिए हे सखी, यदि इस मथुरा में, मधुरा में, मधु जहां पर है, रस है, उसमें हरि जगत को, चित्त को हरण करने वाले और मधुर नैनी श्रीमती राधिका जी प्रकट नहीं होती, तो यह सारी सृष्टि विशेषतः कंदर्प संग सर्ग विफल हो जाए। कंदर्प सर्ग माने अभी जो बतलाया व्याख्या, वो बेकार, किंतु नहीं, बेकार नहीं है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी भक्ति का सहायक न हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज संसार में बुरी नहीं है, उसका व्यवहार बुरा है या भला है कोई चीज बुरा? कृष्ण ने कहा ये संसार में सबसे बुरी चीज हमारे पास ले आओ, अर्जुन को कहा जी संसार में सबसे बेकार की चीज है वो मेरे पास में लाओ, उनको अभिमान था कि हमसे श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं, तो वो बोले जैसे भाई क्या सबसे बुरी चीज ले जाऊं, खोजते 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 उनको बुरी से बुरी चीज मिली, टट्टी। टट्टी को कपड़े में लेकर के ला रहे हैं। तो टट्टी ने कहा जी से हमको क्यों ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? आ तो कृष्ण के पास। क्यों? उन्होंने कहा जी संसार में जो गंदी सबसे उपेक्षित सबसे बुरी चीज है उसको ले जाओ, ले आओ। मैंने देखा जी तुमको देखते ही नाक सिकोड़ते हैं लोग, और यदि स्पर्श हो जाए तो स्नान करेंगे, कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए मैंने सबसे बुरी चीज तुमको समझ करके मैं ले जा। कहा जी बुरी मैं कैसे हुई? अरे कल तुमने पूरी पकवान खाया, मैं कितना सुंदर थी पूरी पकवान के रूप में, लड्डू कचौड़ी महन भोग खीर रसगुल्ला में थी, और तुम्हारे दुर्संग से आज मैं टट्टी बन गई। तुम बुरा है कि मैं बुरा? सबसे बुरा तू है। बस उसने छोड़ करके उनको प्रणाम करके लौट आए कृष्ण के पास। बुरा खोजन मैं गया, बुरा दिखान मोय, हमसे बुरा कोई मिला नहीं, कोई भी बुरा नहीं। इसलिए बुरा कौन है? मैं। हमारे संग से पूरी कचौड़ी दाल सुंदर सुंदर अन्न ये सब गंदे हो जाते हैं। इसलिए संसार में बुरी कोई चीज नहीं है, बुरा है हमारा व्यवहार और सदव्यवहार। सबसे मधुर व्यवहार रखो यदि अच्छा होना चाहते। सब चीजों को भगवान की सेवा में लो। पेड़ में पहले होता है उसका मूल छोटा सा गुठली या बीज, बीज से अंकुरित होता है पत्ता टत्ता डाल इत्यादि, फिर उसमें फल फूल लगते हैं और बहुत मधुर स्वादनीय हो जाता है। हमारी भक्ति भी पेड़ों की तरफ में पहले श्रद्धा से निकले, अंकुरित हो, फिर इसके और पत्ते निकल करके सुंदर रूप में गोलोक बैकुंठ धाम पार करके वृंदावन में जाकर के प्रेम फल था। इस रूप में देखो, एक तमाल कृष्ण को पेड़ को देखो, हरा कोई भी पेड़ हो तमाल का स्मरण आ जाए, ये कृष्ण के जैसा ही है। कोई कदम्ब वृक्ष देखो क्या समझो, ये राधा जी जैसी। यदि तमाल और कदम्ब पेड़ दोनों साथ साथ में हैं तो क्या होगा उद्दीपन? राधा कृष्ण दोनों। गिरिराज को देखते ही कृष्ण की समस्त सारी लीलाओं का स्मरण होगा। ब्रज की एक एक धूली कणा कृष्ण का स्मरण कराती है। कोई भी चीज विश्व में ये सख्य भाव जगत में देखते हो ये क्या है, उसी का विकृत रूप है। वात्सल्य भाव हम देखते हैं उसी का विकृत रूप है। जगत में पति पत्नी का प्रेम देखते हैं उसी का विकृत रूप है। सब कुछ उसी की छाया इस जगत में, उसी को लेकर के चलना है। कृष्णचंद्र जी ठीक ऐसे ही सब लीलाओं को करते हैं, जिसको देख सुन करके आने वाली पीढ़ी भी अभी जो है वो भी हमारे प्रेम में डूब जाए, हमारे तरफ में आकर। कृष्ण की ये सब लीलाएं नहीं होती तो हम लोग परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज जिन राजनीतिज्ञों को संसार में डूबे हुए लोगों को कृष्ण से कोई संबंध नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, लड़ कट के मर रहे हैं, सब समय अशांत हैं, और देखो उन्हीं कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करके भक्त लोग भव सागर को अनाशी पार करके और भगवान के पास नहीं चले। यही मत पूर्वे कृष्ण रसे रसवान, इस प्रकार से कृष्ण रस के भंडार हैं। जो कोई जिस रूप में उनके पास में जाए, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जिस रूप में उनके पास में कल्प वृक्ष की भांति उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जिस रूप में जाए, जतप करिल, ये देवता का हम भजन करते हैं, देवताओं का भजन करने से उसकी इच्छा को कौन पूर्ण करता है? कृष्ण ही करते हैं। कोई भी आदमी कर्म करता है इसका फल कौन देता है? वो कृष्ण ही देते हैं किसी न किसी रूप में। दूसरों में शक्ति नहीं है कर्मों का फल देने में। यद्यपि तथापि यद्यपि करिल रस निजास चरवण तथापि रहिल तीन वंचित पुराण। कृष्ण लीला में उन्होंने सब रसों का आस्वादन किया। रस स्वरूप भी जब हैं तो मैया, सखा, गोपियां कृष्ण को आस्वादन करती हैं, और जब वो और जब रसिक हैं, आस्वादक हैं, तो उनके प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण भोले भाले बन जाते हैं, पौगंड में पौगंड भाव वाले बन जाते हैं, किशोर अवस्था में किशोर जैसे हो जाते हैं। किंतु फिर भी कृष्ण लीला में उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई। उनकी पहली जो इच्छा है, कामना है, उसको ये पहले बतला रहे हैं। कृष्ण कहे, कृष्ण सोचते हैं, कब सोचते हैं, लीला समाप्त हो गई ब्रज की, द्वारका की लीला भी समाप्त हो गई, दो रूपों में समाप्त हुई, एक तो वह लीला दूसरे लोक में पहुंच गई, दूसरे ब्रह्मांड में सरक गई है? और अथवा यहां पर वो अपने लीला को संगोपन कर दिया, अप्रकट लीला उनकी चल रही है, तीन रूपों में, एक यहां चल रही, एक दूसरे ब्रह्मांड में भी चल रही और वहां पर नित्य ही है, तीन जगह में वो तीन ही कृष्ण काम कर रहे हैं, और उनके परिकर भी इसी तरह से लाखों लाखों बने हुए हैं। जब उनकी ये द्वारका की लीला तक भी समाप्त हो गई तो कृष्ण वहां पर बैठ करके सोच रहे हैं, आमी हई रसेद निदान, मैं रस का कारण हूं, रस का कारण मैं, यदि कृष्ण नहीं है तो आत्मा भी नहीं रहेगी, फिर यह शरीर एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन भी घर में नहीं रखेंगे, कीड़े लग जाएंगे, दुर्गंध हो जाएगा, कृष्ण के वजह से आत्मा है और आत्मा के वजह से शरीर है, मन है, मन के वजह से यह शरीर, जिस दिन इसका काम पूरा हो जाएगा, जीवात्मा और कृष्ण इससे निकल जाएंगे, बस इसका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। जीवात्मा के साथ में सब समय कृष्ण है, क्यों है, जैसे कि मिट्टी के घड़े में सब समय मिट्टी है, कोई घड़े से मिट्टी को अलग कर सकता है कभी, पके या कच्चे रूप में, जब तक घड़े का अस्तित्व है मिट्टी का भी अस्तित्व, उसी प्रकार से जीव जब है उसी में भगवान है, उनको भगवान को साक्षी होने के लिए अलग से नहीं आना पड़ता, उसी में है ही है, क्योंकि उन्हीं का अंश है, इसलिए जीवों के साथ में सब समय वो रहते हैं, अभी तो साक्षी रूप में है, और जब हम मुक्त हो जाएंगे माया से तब क्या होगा, तब हो सकता है स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रियतम के रूप में, वो उनके साथ में आदान प्रदान होगा, किंतु अभी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं मैं रस का कारण हूं, वही रस अभी हम लोगों में आनंद के रूप में है, आनंद उसी की एक विकृत वृत्ति है सुख, यह सुख की वृत्ति भी दो रूपों में है, गंदी गंदी चीजों में ही सुख हम पाते हैं और कोई कोई अच्छी चीज में ही सुख पाते हैं, है ना, किंतु है ये जितनी भी चीजें सुख और दुख, ये सब उसी प्रेम का विकार है जो भगवान के प्रति हमारा है। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं पूर्ण आनंदमय हूं, आनंदम अयम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, आनंदमयम ब्रह्म, आनंद आनंदमय, आनंदमय प्रकरण ही उसमें है सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य ने कहा कि नहीं आनंद ही है, आनंदमय नहीं हो सकता। व्यास जी बूढ़े हो गए थे इसलिए वो नहीं समझ सके इसका अर्थ, ये श्रुति का है, उन्होंने संकलन करके रख दिया आनंदमयम, आनंदमयम ब्रह्म। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, व्याकरण संगत नहीं है, अश्रुति सम्मत नहीं है, यदि वह ब्रह्म आनंदमय हुआ तो गोमय, गोमय मैंने क्या, गाय का विकार, गाय ने जो कुछ घास फास खाया उसका विकार होकर के हो गया गोमय, गोबर हो गया। इसलिए मैट शब्द का प्रयोग प्रचुर विकार अर्थ में, यदि प्रचुर अर्थ में करते हैं आनंदमय, जो उनमें आनंद है और वो अधिक है तो गलत हो जाएगा। तो उसमें दुख की भी जरूर कुछ ना कुछ अंश है दुख का, तब आनंदमय है ना, इसलिए वहां पर दुख का लेश नहीं है, इसलिए कोई मूर्ति नहीं रहेगी, इसलिए आनंदमय नहीं रह करके आनंद। किंतु व्यास जी कहते हैं कि नहीं, एक ही साथ वो आनंद है और आनंदमय भी है, आनंद का उपभोक्ता भी है, सब कुछ वो है। ये सब दार्शनिक विचार हैं। मैं पूर्ण आनंदमय हूं, आनंदमय मैंने कृष्ण स्वरूप के लिए कह रहे हैं, आनंदमय आचिन्मय पूर्ण तत्व, कोई चीज की कमी नहीं। हम अभी अकेले नहीं रह सकते, अकेले रह सकते हैं घर में बंद कर दो तो अकेला, थोड़ी देर में कहेंगे जे भाई हमको बाहर निकालो, क्यों, मुझे भूख लगी है, अच्छा तो तुमको घर में रख देते हैं खाना, तो रह सकेगा बिना बातचीत किए हुए किसी से संपर्क में नहीं आकर के रह सकता है कोई, नहीं रह सब कुछ वहां रख दिया गया, बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, ये बड़ी भारी सजा है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण तो पूर्ण तत्व हैं, चिन्मय हैं, चिन्मय माने शुद्ध चिन्मय, उनमें जड़ का भाव भी नहीं, तो भी पूर्ण होने पर भी यदि हम पूर्ण हैं हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े सुना होगा ऋषि लोग अभी भी हिमालय में या बड़े बड़े जगहों में गोवर्धन में भी छिप करके भजन करते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 वर्ष हो सकते हैं, किस रूप में करते हैं वही जाने, कोई वृक्ष बन गए हैं, कोई लता बन गए हैं, कोई पक्षी बन गए हैं, और वहां पर कोई सुख है जानता नहीं है, सुख के रूप में है भजन करते हैं। हिमालय के कंदराओं में बड़े बड़े जोगी लोग अब भी निकलते हैं, कहते हैं जी भाई हमारे समय में महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं उसी समय में तपस्या करने के लिए चला गया समाधि में, अब वहां पर क्या हुआ, अरे वो तो 5,000 वर्ष पूरे हो गए, अब वो तो गए हुए, वो तो सब खत्म हो गया, अब आजकल तो कलयुग का ये इतना समय है। देखा तो एक समय में, अभी कुछ दिन पहले जब मैं घर पर था पढ़ता था तो उस समय में सुना जे एक रेलगाड़ी जा रही थी बंगाल में, और एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा, और रेलगाड़ी आ रही है उसके ऊपर से वो पैदल चल करके उसको पार करता हुआ चला गया, इतना लंबा चौड़ा, लोग देखे तो मर जाएं, सुंदरबन की तरफ में चला गया। कौन था, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, लोगों को दर्शन, किंतु छिप करके रहते हैं। ऐसे कितने लोग सब हैं, बड़ी आश्चर्य सब बातें हैं, मन को श्वास को रोक दिया, श्वास नहीं चलाओ, यदि 5,000, 10,000 वर्ष रह जाओ तो फिर वो मरेगा, सांस के चलने से और आने जाने से आदमी फिर शरीर का ये सब नष्ट हो जाता है, तब आदमी मरता है, उसको रुद्ध कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो कोई यदि पूर्ण ही है तो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कृष्ण वैसे पूर्णों में भी पूर्ण है। कृष्ण के लिए ये कहा गया है, पूर्णम अदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम् एव आदाय पूर्णावेशः। कृष्ण पूर्ण है किंतु फिर भी राधिका प्रेमे अमार करे उन्मत्त, हमारे अंदर में कामना पैदा कर देती है, कौन, श्रीमती राधिका जी। राधिका प्रेमे, राधिका जी का प्रेम से एक आदमी बूढ़ा बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं, चुपचाप बैठा है। इतने में छोटी सी उसकी नातिनी आई और आ करके उसकी गोदी में बैठ गई और बाबा बाबा कहती उसकी दाढ़ी को पकड़ करके इधर उधर कर रही, कभी इधर उठ रही को उधर उठ रही। अब वो बूढ़ा क्या करेगा, उसे बातचीत करेगा बड़े प्रेम के साथ में, ऐसा बच्चा बन करके उसके साथ में खेलने लग जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी, ये भी बहुत आनंदित। पहले ये सब हम लोगों के घरों में ऐसा था, आजकल बूढ़े को निकाल करके फेंक देते हैं, बेचारा बूढ़ा क्या करे, कोई काम नहीं करने देंगे, उसको पागल जैसा समझते हैं। आजकल अमेरिका में ओल्ड हाउस बनते हैं, किंतु उसे लाभ क्या है, ये सब चीजें नहीं, उनको अखबार दे दिया जाता है, रोटी चाय सब दे दिया जाता है, क्या करेंगे, घर का ये स्नेह है ये नहीं। इस तरह से कृष्ण ऐसे बन करके रसास्वादन करते हैं, स्वयं भगवान परिपूर्ण होकर के। राधिका जी तो अपने प्रेम से कृष्ण को उन्मत्त कर देती है, उन्मत्त माने क्या, राधिका जी के संग में खेलने के लिए एकदम पागल कर देती हैं, वो छिप करके मिलते हैं, कोई जाने नहीं, ऐसा भगवान परम ब्रह्म, उनको छिपने की जरूरत नहीं, तभी वो छिप करके मिलना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल, राधिका जी के प्रेम में कितना बल है। मैं सर्वशक्तिमान अखिल रसामृत सिंधु, सबका जन्म स्थान स्थिति प्रलय इत्यादि करने वाला, ईश्वरों का भी ईश्वर, और हमको उन्मत्त करा देती है। वो प्रेम उनका कैसा है, प्रेम ही जगत में सबसे बलवान चीज है। बाघ को उसकी पत्नी बाघिनी प्रेम से कंट्रोल कर लेती है। एक आदमी को जो बहुत बलवान है, बहुत बलवान सब प्रकार से, ये हिटलर जैसा व्यक्ति, उसको कंट्रोल कौन किया है, हिटलर को एटम बनाया, बम बनाया, विश्व को जला सकता था, किंतु एक लड़की के प्रेम में फंस करके अपने जीवन की आहुति उसको दे दे, वहां पर कंट्रोल हो जाता है। एक प्रेम ऐसा चीज है, एक हिंसक से हिंसक पशु भी तू तू करके बुलाओ प्रेम से आ जाए। हमने सुना एक नाई था, तो उसको किसी ने अपराध किया, चोरी या कुछ की, राजा ने उसको बाघ के पिंजड़े में ढकेल करके और दरवाजा बंद कर दिया, बाघ एकदम उसको खाने के लिए दौड़ा, निकट आया सूंघ करके और बैठ गया, पूंछ हिलाने लगा बाघ, और कुछ नहीं किया, उससे प्रेम करने लगा, और वो नाई भी उसके सिर पर हाथ रख करके उससे प्रीति करने लगा। राजा ने कहा, जे भाई ऐसा क्यों हुआ, आज तक तो हजार आदमी को ये खा चुका, इसको खाया नहीं। नाई को निकाल करके पूछा, जी क्या बात है, ये तुमको कुछ नहीं किया, बड़े प्रेम से तुमसे मिल गया। हजूर क्या कहूँ, मैं जंगल में जा रहा था, देखा ये एक रास्ते में बाघ सो रहा है और ऐसे 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 कर रहा है। मैंने कहा, जी जरूर इसको कोई कष्ट है, कुछ पैर और में कहीं चुभ गया है। मैं वहां पर पहुंच करके और बड़े प्रेम से उसके उस कांटे को निकाल दिया और मरहम पट्टी करके उसको ठीक कर दिया। बाघ हमारे तरफ में देखा, सुन करके फिर चुपचाप हो गया, फिर वो चला गया। वही बाघ है, इसलिए हमारे उस ऋण का ऋण हो रहा है, प्रेम का बदला दे रहा है। राजा ने कहा, जे तुम्हारा ये कसूर माफ किया, जो एक जानवर के प्रति ऐसी दया दिखला सकता है, ये कोई भी खराब काम नहीं कर सकता, बस उसको छोड़ दिया। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम है। आजकल बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे थोड़े थोड़े कामों में तुनक जाते हैं, ऐसे देखेंगे पैया की तरफ देखते हैं ना, छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे, कोई कुछ कर दो मुख खराब करके कर लेंगे, उनको यदि मारपीट करके धमका करके बस में लाने की चेष्टा कर नहीं आएंगे, उनके भावों को समझ करके प्रेम से थपथपा करके उनको लाओ तो वो बच्चे बन जाएंगे, आने तो वो बिगड़ जाएंगे। लड़कियां या बच्चे सबके लिए का, उसी प्रकार से ये आश्रम को भी वैसे ही समझो, सभी प्रेम के भूखे हैं, जानवर तक मनुष्य की तो बात ही क्या, इसलिए प्रेम से उनको सहला करके उसको समझाने की चेष्टा की जाए। इसलिए कहते हैं प्रेम, ऐसा प्रेम जो राधिका का, जो कृष्ण को भी वशीभूत और कंट्रोल करके उनके अंदर में कामना पैदा करता है। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट सदा हमारे नाना नित्य नचाए उद्भट। ओ मैं जगत का गुरु हूँ, सबका गुरु हूँ। बंदे कृष्णम
कृष्णम बंदे जगत गुरु,
जगत गुरु कृष्ण जगत के गुरु। किंतु वो कृष्ण कह रहे हैं राधिकार प्रेम गुरु, हमारे प्रेम की गुरु कौन है? राधिका प्रेम गुरु। राधिका का जो प्रेम है वही हमारा गुरु है और मैं उनका शिष्य। अमी शिष्य नट, मैं शिष्य नाचने वाला हूँ। मैंने उनके प्रेम से ये सब नाचना सीखा और ये सब गुण लिया। सदा माए हमें नाना प्रकार के नित्यों में उद्भट नित्य, उद्भट माने बड़े जोर से नित्य कराता है। इसी के लिए एक श्लोक दूसरी जगह दे रहे हैं। राधिका को साधारण स्त्री मत समझो, इस जगत की कोई स्त्री मत समझो, वो कृष्ण की लादनी शक्ति हैं। इसलिए कृष्ण को भी वो प्रेम से शिक्षा देती है, कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। कस्माद वृंदे इत्यादि श्लोक मैं अगले दिन पाठ करूंगा, आज यहीं तक रहे। आप लोगों में से परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का विरह तिथि है। शरद पूर्णिमा कल है, कुछ लोगों ने आज मनाया, वो विद्ध। हम लोग शुद्ध शरद पूर्णिमा के दिन में गुरु महाराज जी का जैसे नित्य लीला में प्रवेश हुआ था उसी दिन से हम लोग आरंभ करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन ही